वासुदेवाय नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके तिर्भवती नैष्टिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 प्रभुपाद की। जब श्रील प्रभुपाद बालक थे तो उनके पिताजी वैदिक संस्कृति के अनुसार भोजन करने के पहले घर से बाहर जाकर पुकारते थे, कोई भूखा है किसी को भोजन चाहिए। हमारी संस्कृति है जो आज सब कोई जानता ही नहीं, और कोई जानता भी है तो वो करना नहीं चाहता, और वो करेगा तो वो खतरे में आ जाएगा। बहुत ऐसी स्थिति है कलयुग की, है ना। अगर किसी को हम ऐसे बुलाएंगे और कोई चोर उचक का घर पे आ जाएगा तो पूरा आपका घर लूट के लेके जाएगा। तो हम देखते हैं कि कलयुग में कभी कभी चाहते हुए भी संस्कृति का पालन नहीं कर सकते, सुरक्षा के विषय से देखा जाए तो। तो अगर अभी हम हमारा भक्ति का जीवन अगर गंभीरता से नहीं लेंगे तो आगे जप करने के लिए भी गुफा में भागना पड़ेगा। शास्त्र में लिखा है एक समय आएगा कि भक्तों को अपना जप करने के लिए छुपकर गुफा में या जंगल में रहना पड़ेगा, और जो बाकी रहेंगे उनको मार दिया जाएगा। तो प्रभुपाद जी के समय पे बचपन पे अच्छा सिचुएशन था और साधु लोग आते थे उसमें, कुछ सब लोग एकदम सही साधु नहीं थे लेकिन कम से कम चोर तो उचक के आतंकवादी नहीं थे। वो आते थे, भोजन करते थे, और बहुत सारे लोग साधु अच्छी तरह होते थे, और उनको भोजन करके संतुष्ट करने के बाद में प्रभुपाद जी के पिताजी गौर मोहन डे उनको कहते थे कि ये मेरा बेटा है अभय, इसको आप आशीर्वाद दो कि ये राधा रानी का भक्त बने। ऐसे पिताजी होना चाहिए, है ना। तो क्या बोलेंगे, इसको आशीर्वाद दो और डॉक्टर बनने दो, इंजीनियर बनने दो, है ना, इसको बड़ा फेमस आदमी, बड़ा आदमी बनने दो, वो आदमी जो भी कमाएगा उसको छोड़ के यहाँ से जाने दो है ना, जो भी कमाएगा, नाम कमाएगा, पैसा कमाएगा, डिग्री कमाएगा, यश कमाएगा, सारा कुछ यहाँ छोड़ के फिर जैसा आया था वैसे जाने दो इसी का मतलब यह हो गया ना। लेकिन राधा रानी का भक्त होने दो का मतलब क्या है कि सब कुछ छोड़ के जाएगा यहाँ पर, लेकिन हृदय में राधा रानी का स्मृति और भक्ति लेकर राधा रानी के पास आएगा। तो ये हर हमारे माता पिताओं को ये ध्यान होना चाहिए, कभी भी ना, अभी अभी देखो बहुत सारे एग्जाम हो गई बहुत सारे मैसेज आते हैं, फोन आते हैं, प्रार्थना करो हमारे बेटे के एग्जाम है, प्रार्थना करो बेटे के एग्जाम है, लेकिन वो एग्जाम में जो भी होगा वो सब भौतिक है। हाँ, अगर वो जो भी एग्जाम है वो पास होने के बाद में जो भी प्राप्त होगा उससे अगर हम भगवान की सेवा के कुछ योजना बना रहे हैं जीवन में तो ये सब ठीक है। जैसे कल पूना टेम्पल में मुझे, मेरे पास एक कन्या आई थी माता पिता के साथ, वो कह रही मैंने मेडिकल का एंट्रेंस एग्जाम दिया, तो मैंने कुछ स्पष्ट बता दिया कि अगर आपका मेडिकल एंट्रेंस में प्रवेश मिलने के बाद में MBBS करके प्रभुपाद जी की सेवा में अगर आपको वो ज्ञान अर्पण करने की इच्छा है तो हमारी प्रार्थना आपके साथ है। अगर आपको खुद के लिए डॉक्टर बनना है, खुद यशस्वी बनना है, धनवान बनना है, जो भी कुछ आपका विचार है, तो हम बोल नहीं सकते कि हम क्या प्रार्थना करेंगे आपके लिए, क्योंकि वही जो ज्ञान आपको प्राप्त होगा अगर वो भगवान की सेवा में नहीं होगा वो आपके लिए बोझ बनेगा, माया का एक मार्ग बनेगा, माया आपको उस मार्ग से ही फंसा देगी पूरी तरह से, तो उस ज्ञान का क्या लाभ हुआ, केवल भौतिक भोग के लिए। तो इस तरह से बालकों के लिए जब भी हम आशीर्वाद मांगते हैं तो ऐसे आशीर्वाद मांगना चाहिए कि राधा रानी का भक्त बने, कृष्ण का भक्त बने, वैष्णवों का भक्त बने, वैष्णवों का सेवक बने, क्योंकि तो वही परम कल्याण की बात है इस विश्व में, और कोई परम कल्याण नहीं है, बाकी सारा कुछ यहीं पर बेकार के मेहनत करनी है, बहुत कुछ कमाना है, और ये सब कुछ मेहनत का फल सारा छोड़ के फ्रस्ट्रेट हो के विफल हो के कोई हमें देख नहीं रहा है, कोई हमें बात नहीं कर रहा है, कोई परवाह नहीं कर रहा है हमारी, सब कुछ होते हुए भी निग्लेक्ट हमको दुर्लक्ष किया जा रहा है, ये स्थिति हमारे मराठी में क्या म्हणतात, हेच आपल्या पदरात पडणार आहे, हमको समझना चाहिए बहुत। और ये जिसको समझ में आया ना उसके जीवन के यश का मार्ग आरंभ हो गया, ऐसा हम कह सकते। जरूरी नहीं कि हम गृहस्थी हो या ब्रह्मचारी हो या सन्यासी हो, ये किसी भी भेष में रहते हुए अगर हमको ये पता चलेगा कि यही मार्ग है और इस पे चलना है 100% निष्ठा के साथ चलना है और किसी के मार्ग के प्रभाव में भटकना नहीं है, तो फिर हमारा जीवन यशस्वी हो गया। इसलिए प्रभुपाद जी कहते थे कि मेरे पिताजी प्योर डिवोटी थे, शुद्ध भक्त थे भगवान के। अभी शुद्ध भक्त होने का मतलब ये नहीं कि आशीर्वाद मांगा है शुद्ध भक्त हो गए, उनका जीवन पूरा भक्तिमय था। प्रभुपाद जी का पूरा जो लालन पालन था ना, वो जगते थे सुबह अपने पिताजी के मंगल आरती की घंटी सुनकर, और बिस्तर में ऐसे खड़े होकर पूरी मतलब सो के पूरी मंगल आरती देखा करते थे। तो ऐसी परवरिश उनकी हुई, दिन भर वो व्यवसाय भी करते थे तो पूरा उनका व्यवसाय का भी कृष्ण भावना मूर्त था, वो दुकान में चूहे हुआ करते थे ना, तो वो चूहों के लिए भी राइस रखते थे उधर प्रसाद, ताकि वो कपड़े ना काटे, क्योंकि उनका कपड़े का बिजनेस था, चूहों को भी भोजन चाहिए और रहते हैं दुकान में, तो फिर वो चावल रखते थे उधर। यानी केवल ऐसा भक्ति मतलब ये नहीं केवल जप कर रहे मंदिर में आ रहे हैं, हमारा सामान्य व्यवहार जो है ना वो भी कृष्ण भावना में होना चाहिए। जब हमारा सामान्य व्यवहार भी कृष्ण भावना में होता है तो हमारा जीवन हम कह सकते हैं कि कृष्ण भावना में है। केवल सुबह का समय कृष्ण भावना, अब बाद में पूरी माया भावना पूरा धन के लिए कट थ्रोट एकदम जितना भी संघर्ष करना है किसी की परवाह ना करते हुए एट एनी कॉस्ट, वो कृष्ण भावना में जो नहीं हो सकता है। प्रभुपाद कैसे थे, अपना पर्स खोलते थे ना, तो जिस प्रकार से पर्स खोलते थे और वो अपने भक्तों को कोई बिल के लिए पैसा देते थे, वो इतना ग्रेसफुल हुआ करता था कि ये लक्ष्मी है इसको भगवान की सेवा में होना चाहिए, इस तरह से उसको निकाल के देते थे। जब जल पीते थे ना, तो आपको पता नहीं होगा उनके जल पीने का जो स्टाइल था ना, वो देखकर कुछ लोग भक्त बने। द वे टू ड्रिंक वाटर, द टेस्ट ऑफ वाटर, हाँ ये पानी का रुचि मैं हूँ, ऐसे भावना से उसको जल ग्रहण करना। तो हमारा पूरा जो संप्रदाय है ना, चैतन्य महाप्रभु का गौड़ीय संप्रदाय, इसका एक्चुअली मूल राधा रानी है। क्यों? क्योंकि गौड़ीय ये नाम कहाँ से आया? हाउ वी आर कॉल्ड गौड़ीय, क्योंकि हमारे चैतन्य महाप्रभु गौरांग महाप्रभु है ना, इसलिए गौड़ीय, र को ड कर दिया, गौड़ीय महासंप्रदाय। ब्रह्म मध्व तो सब बहुत है ना, उसके आगे हमारी जो कास्ट है ना गौड़ सर्व ब्राह्मीण, उनका भी ये संप्रदाय है। इसमें एक राजेंद्र तीर्थ महाराज थे, उनका जो ऑफशूट है वो हमारी कास्ट है पूरी। और उसके बाद में फिर माधवेंद्रपुरी, फिर उसके बाद ईश्वरपुरी, फिर चैतन्य महाप्रभु, तो उसके बाद नाम पड़ा गौड़ीय संप्रदाय, ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय। और गौरांग महाप्रभु कौन है? गौरांग महाप्रभु वो कृष्ण है जिनके हृदय के अंदर राधा रानी प्रवेश कर चुकी है। देखो, जब तक कृष्ण या राम भगवान थे तब तक बहुत मार झाड़ करते थे, है ना। जब सीता जी ने देखा कि पंचवटी में, कहते हैं कि 45 मिनट के अंदर प्रभु रामचंद्र ने 14,000 राक्षसों के सेना को जनपद में खत्म कर दिया। शूर्पणखा देख रही है और शूर्पणखा के उसको जो वर्णन किया ना रावण को, कहते हैं कि कब बाण निकालते टोनिल से, कब धनुष में लगाते, कब छोड़ते, कब दूसरा निकालते, तो समझ में आता नहीं था। जैसे पंखा चल रहा है, पंखा तो अपने मंदिर में है नहीं, लेकिन जब पंखा चलता है तो आपको क्या दिखता है? एक सर्कल दिखता है खाली, कितने पत्ते दिखते क्या? नहीं दिखते ना, तो 3 पत्ते हैं उसके अंदर, लेकिन वो जितनी गति से चल रहे हैं आपको केवल एक सर्कल दिख रहा है, कॉन्स्टेंट हवा आ रही है, कॉन्स्टेंट सर्कल दिख रहा है, इसका मतलब गति है उसके अंदर। उस प्रकार के एक पंखा जैसे यहाँ से निकल रहा है, ऐसे 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 इतने स्पीड से कि हाथ भी दिखाई नहीं पड़ रहा है, बाण भी दिखाई नहीं पड़ रहे, खाली बाणों की बौछार हो रही है, ऐसा शूर्पणखा वर्णन कर रही है रावण को कि ऐसे वो राम थे, राम है जिन्होंने 14,000 आपके जनपद के सैनिकों को, उसके बाद में त्रिशिर खर और दूषण को 45 मिनट में समाप्त कर दिया। तो सीता देवी कहती है अपने पति को कि आप बड़े क्रूर हैं, कैसे मारते हो, आपको इतनी गति से हत्या करते हो, आपको कुछ दयामय है कि नहीं? तो उन्होंने कहा ठीक है, अगली बार जब आऊंगा ना तो फिर कुछ शस्त्र अस्त्र का उपयोग नहीं करूंगा मैं। फिर वृंदावन में क्या हुआ? वृंदावन में क्या हुआ? बाल लीला में जितने भी वृंदावन में जितने लोगों को उन्होंने मारा, कोई शस्त्र का उपयोग नहीं किया, किसी के मुंह में हाथ डाल दिया, किसी के मुंह में जाके बड़े हो गए किसी का स्तन चूस लिया, किसी को एक ऐसा पैर का स्पर्श कर दिया, किसी के साथ हवा में गया और उसको गले में ऐसा दबा दिया, थोड़ा सा दबा दिया त्रिनावर्त को, तो गिर गया, बकासुर की चोंच फाड़ दिया, कोई शस्त्र वस्त्र नहीं लिया, चक्र वगैरह छोड़ के आए थे लेके नहीं आए वृंदावन में। कभी चक्र का प्रयोग किया वृंदावन में किसी को याद है? कुछ नहीं, कभी नहीं किया वहाँ पर, कभी केवल मुरली, बस मुरली और वनमाला, नंगे पैर घूमना, बहुत सुंदर। फिर भी राधा रानी कहते हैं बड़े क्रूर हो, बड़े बड़े निर्दयी हो आप, कैसे मारते हो राक्षसों को। फिर उसके बाद में गए उधर द्वारका हस्तिनापुर में, तो सब कुछ यूज़ किया था, धनुष बाण भी यूज़ किया, कौमुद की गदा भी यूज़ की, सब कुछ यूज़ किया उन्होंने मारने के लिए, लेकिन राधा रानी वहाँ नहीं थी। लेकिन राधा रानी क्या बोलती है, फिर भी आप कैसे मारते हो लोगों को। तो उन्होंने कहा ठीक है, अगली बार ना सांगो पांगास्त्र पार्षदम, अंग स अंग उपंग पार्षद, यही मेरा शस्त्र हुआ और कोई शस्त्र लेके नहीं आऊंगा मैं। अभी इसमें अंतर क्या है बताइए, रामचंद्र के साथ भी सीता थी, हाथ में धनुष बाण था, श्री कृष्ण भगवान के साथ भी राधा रानी थी, वही राधा रानी, सीता राधा रानी एक ही है, लेकिन अपने हाथों से मतलब उंगलियों से सबको अंत कर रहे हैं राक्षसों का। फिर जब भी राधा रानी का भाव लेकर श्री कृष्ण आए, यानी अब तक जो राधा तत्व है सीता वो कृष्ण से राधा राम से बाहर है, सेपरेट है, अभी वो तत्व उनके हृदय में प्रवेश कर रहे हैं, तो वो जो मारने वाले थे वो एकदम दयालु हो गए, है कि नहीं बताइए। किसी को मारा उन्होंने? जगाए मदय को तो मारना चाहिए था, उनको भी नहीं मारा। कहते हैं कि यमराज है ना, यमराज के जितने लोग होते हैं ना स्टाफ यमदूत, वो सब लोग है ना, और क्या कहते हैं, ओवर ड्यूटी ओवर वर्क करके बहुत परेशान हो गए थे, हाईली स्ट्रेस्ड हो गए थे, क्योंकि दिन रात वो रिकॉर्डिंग पूरा, बहुत सारा स्टाफ तो इनके ही रिकॉर्ड में लगा था, बाकी भी जीव दुनिया में रहते हैं, उनका रिकॉर्ड कौन करेगा। तो ऐसे दिन रात उनके स्टाफ इतने परेशान हो गए थे, तो उन्होंने उनका स्टॉक था ना, अभी आपको उसका बर्ड है, सब फाइल भरे हुए हैं, उसके ऊपर भी रखा हुआ है, सब जगह भर गई उनकी, तो जमीन में गड्ढे बनाए उन्होंने और लिख लिख कर रिकॉर्ड गड्ढे में डाल दिए। इतना बड़ा पापों का संग्रह था उनका, और वो बड़ा तकलीफ नहीं था उनका रिकॉर्ड लिख के गड्ढे में जमा करना, वो इम्पोर्टेंट तकलीफ नहीं था। अरे अभी उसको दंड भी देना है, उसके बाद में कौन सा गड्ढा खोलेंगे, बाद में उसको निकालेंगे, उसका दंड देंगे, दूसरा गड्ढा खोलेंगे। इसलिए इस विचार से और इस गतिविधि से और परिश्रम से सारे यमदूत बेचारे परेशान हो गए थे। ऐसे जगाए मदाई थे जिनके एक दिन के पाप पूरा विश्व के सब लोग मिलकर प्रयत्न पूर्वक भी जीवन भर नहीं कर सकते, उतना एक दिन में करते थे, तो कितने दंड के भागीदार थे वो, सोचा। ऐसे लोगों को भी चैतन्य महाप्रभु ने गले लगाया और उनके सारे पाप खुद स्वीकार किए, खुद काले हो गए, उनको तत्क्षण शुद्ध भक्त बना दिया। ऐसे नहीं अधो साधु श्रद्धा तथा साधु संग, हाँ अभी आप पाठशाला में जाओ, उधर ट्रेनिंग ले लो, चार नियम पालन करो, थोड़ा धीरे धीरे आपको दीक्षा देंगे बाद में, ऐसा कुछ नहीं। तत्क्षण अभी पापी, सर्वोत्तम पापी अभी तत्क्षण प्रेमी भगवान के, आंखों से आंसू बह रहे, भाव से रो रहे, नृत्य कर रहे। कहाँ से आया ये करुणा महाप्रभु जी के अंदर, क्योंकि उनके अंदर राधा रानी बैठी हुई है। इसकी कथा वो इमली कला में आती है, पीली पोखर में आती है, जब भगवान ने वो जो भाव अनुभव किया तो उन्होंने निश्चय किया कि अगली बार ये जो रहस्य मुझे पता नहीं है वो पता करने के लिए मैं आऊंगा। तो राधा रानी क्या है ये कृष्ण को भी पता नहीं, जब उन्होंने थोड़ा सा उसका अंश अनुभव किया ना, तब उनको लगा कि ये ऐसा विषय है जो मुझे भी पता नहीं है, मैं सर्वज्ञ हूँ फिर मैं जानता नहीं हूँ। तो जानने के लिए उन्होंने कहा कि आऊँगा एक दिन, आ जाऊँगा, ऐसा नहीं। 48 साल का एक पूरा अवतार उन्होंने खर्च किया उसके लिए, इस तत्व को समझने के लिए। तो हम कैसे कह सकते कि हमको, हम जानते हैं, कृष्ण स्वयं नहीं जानते उसको, तो प्रयास कर रहे हो। तो राधा रानी कहती है कि अब जब मेरा भाव लेकर आप आओगे ना, तो आप अपने आप को संभल नहीं पाओगे, आप जमीन पे गिरोगे, कांटों में गिरोगे, पत्थर पे गिरोगे, पानी में जमुना में गिरोगे, पेड़ में बैठे हो तो पेड़ की शाखा से गिर जाओगे, और बार बार आप अपने आप को जख्मी करते रहेंगे। और मुझे ये विचार भी सहन नहीं हो रहा है कि आप मेरा भाव लेकर आने का प्लानिंग कर रहे हैं, कि संवाद राधा और कृष्ण में हो रहा है। तो राधा कहती है कि अगर आपने निश्चय कर ही लिया है मेरा भाव लेकर आने का, तो फिर मैं आपको अपनी कांति से ढक देती हूँ, ताकि जहाँ जहाँ गिरेंगे आप तो आप जख्मी नहीं होंगे। तो अंदर भी राधा रानी, बाहर भी राधा रानी। इसलिए वो जो परित्राणाय साधुनाम, और क्या लिखा आगे, विनाशाय च विश्रुताम, ये भगवान ने पब्लिक में ऐलान किया ना वो, कि मैं हर बार जब भी आता हूँ दुष्कृतों का नाश करता हूँ, राक्षसों का नाश कर देता हूँ, भक्तों की रक्षा करता हूँ, धर्म की स्थापना करता हूँ। एक तरह से भगवान ने ही अपना ये वाक्य ना आधा फेल कर दिया है, कि किया कि नहीं बता। कलयुग में जब वो कृष्ण भगवान राधा रानी का भाव लेकर आए राधा रानी को, तो वो पूरा ट्रांसफॉर्म्ड पर्सनैलिटी थे, पूरा परिवर्तन जिनका हो गया है कंप्लीट, उनका व्यक्तित्व ही चेंज हो गया एक्चुअली। उन्होंने कभी भी किसी को छोड़ा नहीं आतंकवादियों को, सबको दया दिखाया कोशिश करके, लेकिन समय आने पर सबको दंड दिया, किसी को नहीं छोड़ा। वही कृष्णा अभी पूरे परिवर्तित रूप में आ रहे हैं और अपना जो घोषणा किया था उन्होंने विनाशाय च दुष्कृतां, उसको उन्होंने त्याग दिया, अपने ही घोषणा को, अपने ही वचन को त्याग दिया उन्होंने, और परित्राणाय साधु नाम किया, धर्म संस्थापना भी किया। ये सारा परिवर्तन जो है वो राधा रानी की वजह से, क्योंकि तो राधा रानी जो है ना, जैसे कोई देखो खस का शरबत है सुनो, और आपके पास पानी है, एकदम पारदर्शी पानी है, जैसे ही आप उसमें खस का शरबत डालते हो उसका रंग क्या होता है, हरा रंग हो जाता है। पानी अपना जो स्वाभाविक रंग है या स्वाभाविक जो उसका दर्शन है वो खो बैठता है पानी, और वो डाला गया जो है उसका ही रंग उसका ही स्वभाव स्वीकार कर लेता है। फिर पानी में ठंडक भी स्वभाव भी आ जाता है, खस का हरा रंग भी आ जाता है, पीने पर भी ठंडक का अनुभव होता है। तो पानी के साथ में जो मिला हुआ है उसका अनुभव सबको मिलता है, अभी वो पानी नहीं कहलाता है, उसको हम खस का शरबत कहते हैं, कहते हैं कि नहीं। उसी प्रकार से जब राधा रानी ने कृष्ण के अंदर भाव रूप में प्रवेश किया तो वो कृष्ण नहीं रहे, वो गौरांग महाप्रभु बने, और वो गौरांग महाप्रभु कृष्ण होने पर भी कृष्ण जैसे नहीं रहे। राधा रानी में और कृष्ण में क्या अंतर है, तो दुई भगवान क्या, वो क्या बंगाला में श्लोक है, एक दुई है ना, हाँ राधा कृष्ण आई अन्य, एनीवे तो उसमें उसका अर्थ यह है कि ये दुई देहधारी है लेकिन एक आत्मा है, ऐसा अर्थ है उसका, कोई अंतर नहीं उसके अंदर। भगवान ने लीला करने के लिए गोलोक धाम में अपने आप को स्त्रीलिंग में भी विस्तारित किया, तो वो जो श्रीलिंग राधा रानी बनी और ये पुल्लिंग कृष्ण है, दोनों समान है, उनके अंदर कोई भी व्यक्तित्व में तकनीकी दृष्टि से कोई अंतर नहीं है, सारे ऐश्वर्य सारी कला सब कुछ है उनके अंदर। एक अंतर है कि कृष्ण सांवले रंग के हैं और राधा रानी गौर वर्ण की है, स्वर्ण गौर वर्ण की है, एक भाई अंतर हो गया। आंतरिक अंतर क्या है कि जितनी करुणा राधा रानी में है उतनी कृष्ण में भी नहीं है। अच्छा वो कृष्ण से निर्माण हो गए तो करुणा भी उनकी है वो, लेकिन वो जो उनकी करुणा है जब वो उनसे अलग होकर एक व्यक्ति रूप में मूर्तिमान रूप में प्रकट होती है तो वो करुणा उनसे भी अधिक हो जाती है जितनी उनके अंदर है। इसलिए जब वो व्यक्तित्व दोबारा भाव रूप में कृष्ण में अंतर प्रवेश करता है तो कृष्ण भी वैसे ही करुणा वाले हो जाते हैं, जिसकी कोई तुलना नहीं है। इनकी करुणा इतनी अगाध है, इतनी अगाध है कि किसी भी असहाय पति जीव को देखकर उनको रोना आता है। जैसे राधा कुंड में वो भेड़िया रो रही थी, कई उदाहरण है ऐसे, उनको किसी का दर्द सहा नहीं जाता है। केवल उनके दृष्टिपथ में या उनके चेतना पथ में आना चाहिए उनको, क्यों, क्योंकि जब उनके चेतना पथ में यानी कि उनके जो अवधान है उनका अवधान नहीं चेतना पथ उसमें आएंगे तो वो तुरंत स्वीकार कर लेती है। हम लोगों का क्या प्रयास होना चाहिए कि हम लोगों के हृदय में इतनी सी क्यों ना हो कृष्ण की इच्छा होनी चाहिए, कृष्ण की प्राप्ति की इच्छा होनी चाहिए, कर्ण मात्र क्यों ना हो, नगण्य क्यों ना हो, उतनी होगी ना तो राधा रानी तुरंत आपको स्वीकार करेगी, लेकिन कृष्ण नहीं करेंगे। कृष्ण क्या बोलेंगे, अनन्यश्चिन्तयन्तु मां योजना पर्युपासते, जब तक 100% शत प्रतिशत आप मेरे शरण में नहीं आते हैं तब मैं आपको कुछ नहीं कर सकता। जब योग क्षेम वहां में की बातें हैं ना, देखभाल करूंगा आपकी, लालन पालन करूंगा, वो सब कब होगा, जब अनन्य चिंतयन्तु मां होगा तब से वो आरंभ होगा, बहुत दूर की बात है वो। हम लोग अभी तड़प रहे हैं यहाँ पर, पैसा रखूँ कि भगवान, पैसा की भगवान, पैसा की भगवान, जन्माष्टमी कैसे होता है, अभी खुद मार्केट में गए तो 10,000 भी खर्च करके आएंगे, खुद के लिए 4-5 पैंट शर्ट कुर्ता, वाइफ के लिए 2-4 साड़ी, 10-15,000 ऐसे उड़ा के लेके आएंगे। ऐसे घूमने घामने गए थे लेकिन बाय द वे कर भी दिया शॉपिंग, क्योंकि जन्माष्टमी आएगी तो कितनी चर्चा करते हैं, किसी दैचे 1,000 दे 1,500 दे है ना, बहुत चर्चा होती है पति पत्नी के बीच में, हमको पूछो बताते हैं हम हाउ मच टू गिव, पर जब शॉपिंग करने जाते हैं तभी कुछ बजट होता नहीं है, वो सा अनएंडिंग बजट होता है, जहाँ तक इच्छा है वहाँ तक बजट है। ये हमारी स्थिति आज की, इसमें अनन्य चिंतन कहां से हो रहा है? नहीं हो रहा है। और कृष्ण की कृपा कब होगी? तब होगी। तो बीच में फिर राजारानी बैठी हुई है, तो हम जैसे सभी पति जीवों को सहारा देती है। राजारानी के चरणों पर ना बहुत सारे चिन्ह हैं, तो लेफ्ट चरणों में ना एक महल का चिन्ह है, बाकी सब है, अंकुश भी है, चक्र भी है, पद्म भी है, बहुत सारी सुंदर सुंदर चीजें हैं उसमें, एक पूरा महल है उसके अंदर। वो किस चीज को बताता है, किसका लक्षण है? वो आश्रय तत्व का लक्षण है। वो सभी जीवों को, यहां तक कि कृष्ण को भी आश्रय देती है, तो सबको आश्रय देने वाला है, सबके पालनहार है, सबके शरणागति के विषय है, वो भी उनको उनके यहां पर आश्रय लेते हैं, सबको आश्रय देती है। वो कैसा आश्रय है? फुल प्रोटेक्शन। राधा रानी की शरणागति में कोई आएगा ना, तो कोई प्रकार का भय नहीं आपको, क्योंकि प्रेम सखी मुयन को मारत, जीतन के संग कहां लड़ेगी, जापर तू अनुकूल किशोरी, तापर माया कहां करेगी। यानी राधा रानी की शरण जो ले चुका है, और राधा रानी जिसके लिए अनुकूल है, अनुकूल तब होते हैं जब शरण ले तो तुरंत अनुकूल हो जाते हैं आपके लिए। तो जहाँ पर तू अनुकूल किशोरी, जब हम उनका अनुकूल्य स्वीकार करते हैं, तहाँ पर माया क्या करेगी? माया कुछ नहीं कर सकती है, क्योंकि जो माया माया कहते हैं ना, वो इनका ही अंग है, इनसे ही निकला हुआ है। महात्मनस्तु माम पार्था दैवी प्रकृति माशता, ये जो है वो अंतरंग शक्ति है राधा रानी। और क्या वो सर श्लोक है, दैवी ऐसी गुणमयी मम माया दुरात्यया, बहुत भयंकर जो है उसको लांगना मुश्किल है, एक शेर की तरह है, उसको हम ना ही टाल सकते हैं, ना ही क्रॉस कर सकते हैं, वो महामाया है। वो किसका अंग है? अंतरंग शक्ति का ही अंग है वो। तो जो उनका ही अंग है, वो जब जिस पर वो अनुकूल हो जाती है, तो उनका ही अंग उसको कैसे मार सकती है? वी कैन नॉट बी अफ्लिक्टेड बाय महामाया, ये पोजिशन है उनकी। कृष्ण भी कुछ नहीं कर सकते हैं अगर राधा रानी किसी को क्षमा कर देती है। अश्वत्थामा को क्षमा कर दिया उन्होंने, कृष्ण ने इतना भयंकर श्राप दिया था, जब तक सृष्टि रहेगी तब तक कड़पते रहोगे, किसी को श्राप नहीं दिया। लेकिन राधा रानी का ऐसा अधिकार है कि हमसे नहीं कि मैं कृष्ण से बड़ी हूं, मैं अकेली हूं जो उनको उनका श्राप को भी नष्ट कर सकती हूँ, श्राप का प्रभाव नष्ट कर सकती हूँ, भाव से नहीं दिया। करुणा प्रधान थी उसके अंदर, मैं कौन हूँ ये भाव प्रधान नहीं था, जो करुणा थी वो प्रधान थी। तो अश्वत्थामा को, अश्वत्थामा ने करुणा का अनुभव किया, और कृष्ण ने भी दिया हुआ शाप जो है राधा रानी ने क्षमा कर दिया उसको। तो एक क्षमाशीलता जो है ना, वो राधा रानी के अंदर बहुत प्रधान है। अगर आप उनकी वास्तविक शरण लेते हैं, तो वो कौन किसी प्रकार का अपराध भी क्षमा कर सकते हैं। उनको रुचि किसमें है कि भाई हजारों अनंत अपराध भी होंगे किसी के अंदर, हजारों अनंत पाप प्रवृत्ति भी होंगी, लेकिन बीच में एक चिंगारी होगी ना कृष्ण भक्ति की, उनके प्रियतम के लिए किसी के मन में थोड़ा बहुत भाव है, उतना ही काफी है उनके लिए, उतना ही पर्याप्त है, उसी से वो सब कुछ हमें क्षमा कर सकते हैं। इसलिए इनकी अनुकूलता, इनका अनुग्रह, इनका आश्रय बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक कि श्री कृष्ण भी स्वयं वहां पर आकर आश्रय लेकर शरण हो जाते हैं उनके। तो बाहरी दृष्टि से क्या कहते हैं, हैंड पैक्ड हस्बैंड, ऐसा कहते हैं ना। अगर कोई अपने पत्नी के ही पीछे रहेगा बहुत, तो लोग हंसते हैं, उसको टीका करते हैं। तो लौकिक दृष्टि से ये सही है, लोग ऐसा टीका करते हैं उसके ऊपर कि पत्नी के बिना कुछ सोचता नहीं है, पत्नी के बिना कुछ करता नहीं है, जो पत्नी बोलेगी वैसा ही करता है, हैंड पैक्ड हस्बैंड। लेकिन श्री कृष्ण ऐसा रहना पसंद करते हैं। सर्वलोक महेश्वर होने के पश्चात भी प्राइवेट में वो अपने निजी जीवन में ये चाहते हैं कि मैं इनका ही बन के रहूं और मुझे कुछ नहीं जाना करना है। यहां तक कि अपने हृदय का भाव जो है वो द्वारका में प्रकट नहीं कर सकते, बीच में भी करते हैं, सब रानियां परेशान हो जाती है कि राजा रानी कौन है ये, बार बार उनका नाम पुकार रहे हैं, लेकिन ओपनली वो नहीं प्रकट कर सकते द्वारका में, क्योंकि ऐश्वर्य भाव है ना वहां पर। तो वहां पर रात को कभी नींद में उठकर पुकारते हैं, कभी कभी असह्य हो गया तो भोजन करते करते रो लेते हैं कभी कभी, लेकिन वो उनको अभी ऐसी जरूरत है कि मुझे इस ऐसी जगह जाना है जहां पर मुझे कोई जानता नहीं कि मैं भगवान हूं। भगवान को भी स्पेस चाहिए अपना, प्लीज अंडरस्टैंड, अपने को नहीं चाहिए, भगवान को भी स्पेस चाहिए। तो सब जगह भगवान भगवान भगवान, आरती पूजा, वेदों की ऋचाएं, प्रार्थनाएं, सब जगह गौरव, सब जगह सम्मान, प्रतिष्ठा, पूजा हो रहा है, तो भी कुछ अपना स्पेस चाहिए ना, कि जहाँ पर मैं अपना जीवन जी सकूँ, जो मुझे चाहिए जैसे चाहिए वैसे रह सकूँ, कोई मेरे पीछे पीछे फोटो निकालने के लिए नहीं आ रहा है ना। बड़ा आदमी का क्या प्रॉब्लम बताओ, जहाँ जाएगा उसके पीछे में रिपोर्टर लगे हुए, कैमरामैन लगे हुए, कोई सेल्फी निकाल रहा है, कुछ कर रहा है, उसको अपना सॉक्स भी लेने के लिए टाइम नहीं उसको। हमारा भाग्य हम कहीं भी जाके सॉक्स बनियान पैंट शर्ट ले सकते हैं, इन प्रसिद्ध व्यक्ति को मुमकिन है क्या वो? नामुमकिन है। अगर कोई क्रिकेटर है फेमस और उसको अगर सॉक्स खरीदना है तो उसको ना उस देश में जाना पड़ेगा जहाँ लोग क्रिकेट नहीं खेलते, तो फिर वो फ्री है, वहाँ जाके दुकान में सॉक्स खरीदेगा, जो भी चाहिए सब्जी खरीदेगा, बोले यहाँ पर ये सब्जी बहुत अच्छी मिलती है, यहाँ पर ये संतरा जो इतना बड़ा होता है वो जाके ले सकते, लेकिन अगर वो इम्पोर्ट होके यहाँ पर आया ना वो नहीं ले सकता है, तो सब लोग पीछे पीछे भागेंगे उसको, उसको जिंदगी जीने ही देंगे, चैन के साथ रहने ही देंगे। तो वैसे भगवान जहाँ जहाँ जाते हैं सब जगह वो ईश्वर और परम कृष्ण है ना, तो सब जगह वो उनके पीछे देवता लगे हुए हैं, देव ऋषि लगे हुए हैं, भक्त लगे हुए हैं, सब चरणों की धूल ले रहे हैं। हमारे यहाँ कैसे महाराज आते हैं तो कैसे वो आगे जा रहे पीछे सब लोग ऐसे 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 सब रास्ता में भी चरण धूल ले रहे हैं उनकी। इसलिए भगवान चाहते हैं कि अपनी हृदय की जो निजी बात है वो प्रकट करने के लिए, वो अनुभव करने के लिए, उस तरह से जीने के लिए वो वृंदावन आते हैं। और जगन मोहिनी माया से अनेक माया उनकी, तो एक जगन मोहिनी माया है, उस जगन मोहिनी माया के आधार से सबका वो ज्ञान छीन लेते हैं कि मैं भगवान हूँ। सबका ब्रज में जन्म लेने के पहले ही वो ब्रेन में से वो उतना पार्ट डिलीट पूरा डिलीट कर देते हैं, किसी को नहीं पता वहां पर कि ये भगवान है। फिर वो उनके बीच में अवतरित होते हैं और फिर जो कार्य करते ना वो उनका निजी जीवन है। प्लीज अंडरस्टैंड, कृष्ण को कैसे रहना पसंद है उसका प्रमाण उनका ब्रज का लाइफ है। नंगे पैर घूमना अच्छा लगता है उनको, अपने भक्तों के साथ में गऊ चराना अच्छा लगता है उनको, गैया अच्छी लगती है उनको, ब्रज के रज में लोटपोट होना अच्छा लगता है उनको, उनको अपने भक्तों के मुख से निकाल कर खाना अच्छा लगता है। देखो आपके प्लेट से मैं खा सकता हूँ लेकिन मुख में गया हुआ कैसे निकाल कर खाऊंगा मैं, पहले तो उनको इतना शिसारी आएगी उसको सोच के भी। लेकिन कृष्ण वही करते हैं उधर जाके, एक तो मैया उनको बचपन में कड़क कड़क खाना वो मुँह में डाल के चबा के पेस्ट करके उसके मुँह में डालती, जैसे पंछी कैसे रहता है अपने मुँह से कुछ लाता है और उसके मुँह में डालता है, वैसे मैया करती थी वो। और वो रुक्मिणी को बता रहे हैं कि उसका स्वाद तुम्हारे 56 भोग में नहीं है, क्योंकि रो रहे ना खाना खाते हुए, वो पूछ रहे क्या हुआ क्या हुआ, कुछ नमक ज़्यादा गिरा, मिर्ची कम हो गई, क्या कुछ बताओ, नहीं सब परफेक्ट है, फिर क्यों रो रहे हो? तो बता रहे हैं कि वो जो मैया बचपन में सख्त खाना मुँह में डाल के नरम करके मेरे मुँह में डालती थी उसका स्वाद तो इसको नहीं आ सकता ना, तो रुक्मिणी भी क्या बोलेगी। तो उनको ये सब अच्छा लगता है। और फिर आगे जाकर गाय के कभी कभी छन को मुंह लगा के दूध पीते हैं, वैकुंठ के स्वामी होने पर भी लोगों के घर में जाकर चोरी करके 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 मक्खन और सब दही और छाछ खाते हैं। तो हम लोग क्या समझ सकते हैं कि ये उनका निजी जीवन है, दिस इज हाउ यू वॉन्ट टू लिव, इस तरह से वो जीना चाहते हैं। और उसी जीवन में वो उनकी प्रियतमा है राधा रानी, जिसके सामने बाकी सब जगह बहुत शैतानी करते हैं, गोपियों को बाकी सब बड़े गोपियों को तंग करते हैं, उनके घर में जाके मक्खन चुराते हैं, वाद विवाद करते हैं, कभी जाकर मूत्र विसर्जन करते हैं, कभी बच्चों के कान में पानी डालते हैं, कभी उनको बच्चों को चिमटा निकालते हैं, मतलब जो अच्छा लगेगा नहीं किसी माँ को वो सब करके आते हैं, ऊपर से वाद विवाद भी करते हैं, चिढ़ाते हैं उनको। लेकिन वो राधा रानी जब विषय आता है उनका तो नतमस्तक हो जाते हैं। और ये सबका कारण एक ही है, इनका जगन मोहिनी माया से ज्ञान छीनना, इनका नंगे पैर घूमना, गैया चराना, माखन चोरी करके खाना, राजा रानी को शरण जाना, ये सबका सार एक ही है, वो है प्रेम। ये प्रेम जो है ये इनका जीवन है कृष्ण का, और वो प्रेम जो है वो मूर्तिमान रूप से राधा रानी है, जो उनके सारे प्रेम की जो तृष्णा है उसको संतुष्ट कर देती है। ये हमको कृष्ण की प्राप्ति करना है ना जीवन में, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, भजन करके कृष्ण की प्राप्ति करना चाहते हैं। ये प्राप्ति केवल इस प्रेम को देने से ही होती है। भगवान को आप एक बड़ा 10 करोड़ का, 50 करोड़ का, 100 करोड़ का मंदिर बांध के दो, अच्छा लगेगा, लेकिन वो आपके नहीं होंगे, आपके नहीं बनेंगे, वो आपको आशीर्वाद देंगे। क्या चाहिए तुमको? यश चाहिए, ले लो। धन चाहिए, ले लो। पत्नी चाहिए, ले लो। प्रॉपर्टी चाहिए, ले लो। जो चाहिए ले लो, संतुष्ट हूं मैं आपसे। लेकिन रूप गोस्वामी हम क्या बताते हैं, कौन सी चीज कृष्ण को आकर्षित करती है, व्हाट इज श्री कृष्ण आकर्षणी, वो है प्रेम पूर्ण भक्ति पूर्ण सेवा। जब वो गई करता है ना, तब वो उसके हो जाते हैं। और वो किसी को शुद्ध भक्ति देते नहीं है, क्योंकि वो शुद्ध भक्ति देने पर क्या होता है ना, उस शुद्ध भक्ति करने वाले को अपने आप को बेच देते हैं उसके लिए, उसके हो जाते हैं। जैसे उन्होंने चैतन्य चरितमृत में कहा है ना कि कई भक्तों का नाम लेके बताया कि मैं इसकी प्रॉपर्टी हूँ, ये मुझे आके कभी बेच सकता है, ही कैन सेल मी। क्योंकि जब वो कोई भक्ति भक्त उनको शरण जाता है, प्रेम करता है उनके ऊपर ना, फिर वो उनके हो जाते हैं, फिर वो अपना अस्तित्व खो बैठते हैं, अपने व्यक्तित्व अस्तित्व अधिकार सब कुछ खो बैठते हैं, उसके हो जाते हैं, फिर वो जो करेगा वो मंजूर है। और ये कृष्ण का निजी जीवन है, प्लीज अंडरस्टैंड। और ये निजी जीवन कृष्ण का जो है वो अति उत्कट तरीके से राधा रानी के विषय में प्रकट होता है कि कृष्ण एक्चुअली क्या है, हु इज कृष्णा, उनका व्यक्तित्व, उनका जो प्रवृत्ति है वो क्या है एक्चुअली। बाकी हम क्या देखते हैं द्वारका में वगैरह, बहुत बड़ा पॉलिटिशियन कर रहे हैं, राज दरबार चला रहे हैं, देवताओं को कंट्रोल कर रहे हैं, हस्तिनापुर में वो मैनिपुलेट कर रहे हैं सबको, कैसे उनका ख़त्म करना है, महाभारत का युद्ध में कैसे चाल चाल चलते हैं, कैसे कैसे लोगों को बचाते हैं पांडवों को, तो उनका एक बाह्य स्वरूप है। एंड पीपल गेट वेरी इंप्रेस्ड बाय दैट, ये देखो क्या व्यक्तित्व है, हर चीज़ में एक्सपर्ट है, राजनीति में भी एक्सपर्ट है, हाँ अपने लोगों को संभालने में एक्सपर्ट है, द्वारका में समुद्र के अंदर जाके राज्य बसाया उन्होंने, एक उनका बाह्य खूबियाँ हैं, लेकिन अंदर की उनकी प्रवृत्ति क्या है, उनका निजी व्यक्तित्व क्या है। जैसे हम ऑफिस जाते हैं तो हमारा एक व्यक्तित्व है, लेकिन घर आते हैं तो हमारा एक दूसरा व्यक्तित्व है कि हमको ये मिर्ची अच्छी लगती है, हमको ये अच्छा लगता नहीं, ये बैंगन अच्छा लगता है, वो करेला अच्छा लगता नहीं, ये हमारा अंदर का व्यक्तित्व है, तो ऑफिस में प्रकट नहीं होता है, ये निजी जीवन है हमारा। वैसे निजी जीवन राधा रानी के विषय में प्रकट हो जाता है, और राधा रानी के अंदर क्या है, पूरा माधुर्य प्रेम है। वो ब्रज में ना कोई भी व्यक्ति भगवान को भगवान है इसलिए प्रेम नहीं करते हैं, क्योंकि वो जानते नहीं कि भगवान है। और बीच बीच में भगवान को ऐसा लगता है कि थोड़ा सा चमत्कार दिखाए तो अच्छा है, थोड़ा सा मैया अभी डांट रही है कि तुमने मट्टी खाई है, दाऊ जी कंप्लेंट कर रहे हैं, और बहस हो रही है कि नहीं नहीं मैंने उनको हराया था आज, इसलिए वो मेरा झूठा झूठा बयान दे रहे हैं आपको कि मैंने मट्टी खाई है, ये दोनों खुद मट्टी खाई थी, मैंने देखा हुआ है। तो सब बयान बहस होने के बाद में क्या निर्णय होता है, क्यों इतना बहस करना है, मुँह खोल के दिखाओ ना अंदर क्या है कि नहीं। तो उन्होंने कहा जी अभी थोड़ा सा मजा कर लेते हैं, जैसे मुँह खोला ना अभी मट्टी के बदले में मट्टी रहेगी बाजू में, वो पूरा ब्रह्मांड का दर्शन हुआ, इतने ब्रह्मांड दिखाई पड़े उसके अंदर की एक ब्रह्मांड में जिसमें वो खड़ी है वो खुद को भी देख रही है कि वो भगवान के मुख में दिख रही है। दिस इज वेरी फनी ना एक्चुअली, ऐसा आप टीवी देख रहे हो और आपको आप खुद को भी टीवी देखते हुए देख रहे हो टीवी देखते हुए देख रहे हो, दिस इज समथिंग वेरी फनी। वैसे ही वो देख रही है, तो उसको तुरंत ही एहसास हुआ कि ये मेरा बालक नहीं है, ये तो भगवान है, सृष्टि के रचयिता है, सारे ब्रह्मांड अखिल ब्रह्मांड नायक है, और मैं तो उसको डांट रही हूँ, मैं तो उसको क्या क्या कर रही हूँ, कितनी बार दंड दिया, उसको उंगली दिखाया, डर दिखाया, अरे बाप रे, तुरंत वो हाथ जोड़कर वो वेदों की प्रार्थनाएं गाने लगी। तो इसने बंद कर दिया मुँह, तो मुँह बंद कर दिया वापस, जगत मोहिनी माया बैठी हुई है, पूरा छीन लिया जो अभी तो अनुभूति हुई थी सब छीन लिया, और तुरंत अपने बालक को स्तन पे लगाया, स्तनपान कराया। इसका कारण क्या है, क्योंकि ब्रज में भगवान भगवान है इसकी अनुभूति न होने के कारण केवल माधुर्य ही माधुर्य है सब जगह पर। मैं ना आपको एक उदाहरण देता हूं कि माधुर्य कैसा प्रभावी होता है और ऐश्वर्य कैसा हार जाता है। बरसाना आई कैंप में ना हम लोग कभी कभी बहुत ठंड पड़ती है, ठंडी के समय कैंप करते हैं लेकिन चिल्ला के समय नहीं करते। 15 दिसंबर से 15 जनवरी चिल्ला रहे, चिल्ला मतलब इट्स लाइक ओनली फॉग एंड फॉग एंड फॉग, खाली बर्फ पड़ना बाकी है, बाकी सब कुछ है ठंड। तो मैंने अनुभव किया है कि मैं हमेशा मेरे कमरे में अगरबत्ती जलाता हूँ सुगंध के लिए, तो ना वो अगरबत्ती है ना वो जितनी धुंध बनी है, धुंध मतलब क्या फॉग, ठंड के वजह से फॉग बनता है ना दिन भर, रात को फॉग बनता है और दिन में भी कभी 12 बजे तक फॉग रहता है। तो फॉग कमरे में भी आता है ना, हम दरवाजा खोल के बाहर कुछ डालने गए तो थोड़ा फॉग अंदर भी आता है। तो फॉग अंदर आते ही ना वो अगरबत्ती बुझ जाती है, कई बार जलाना पड़ता है उसको। उस समय मुझे पूरा ध्यान में आया कि कैसे ब्रज में माधुर्य के प्रभाव से ऐश्वर्य नष्ट हो जाता है। वो जो अगरबत्ती के सामने जो है ना वो निखारा, वो ऐश्वर्य है, वो कोशिश कर रहा है कि मैं जलता रहूं और मेरे सुगंध देते रहूं, लेकिन जो सब जगह छाया हुआ फॉग है ना वो उसको बुझा देता है। मैंने एक अगरबत्ती को कई बार जलाया हुआ है, आपको समझ में आया ना अभी। इसी प्रकार से ब्रज में माधुर्य का प्रभाव है, प्राधान्य है उसका। तो कृष्ण को क्या लगा एक दिन, चलो थोड़ा सा इसको चमत्कार दिखाते हैं वैकुंठ का। तो चंद्र सरोवर में, उधर चंद्र सरोवर की रासलीला चल रही है, वसंती रास, वसंत ऋतु में रासलीला चल रही है। तो उसमें सब गोपियों को वैसे ही होता है कि मेरे साथ ही कृष्ण नृत्य कर रहे हैं तो मैं ही स्पेशल गोपी हूँ, इसलिए उनको थोड़ा सा थोड़ा बहुत अहम उत्पन्न हुआ। तो भगवान अंतर्धान हो गए, कई बार अंतर्धान हुए रास में से, लेकिन अंतर्धान होने में बहुत विविध प्रकार से अंतर्धान होते हैं। फिर राधा को लेकर अंतर्धान होते हैं, कुछ देर उनके साथ में रहते हैं, फिर उनको छोड़ देते हैं, फिर वापस अकेले अंतर्धान हो जाते हैं। तो इसमें क्या हुआ, राधा रानी को भी छोड़ दिया उन्होंने और अंतर्धान हो गए वो रास में से। और क्या क्या उन्होंने, एक रस्ते में बीच में जाकर ना चतुर्भुज नारायण बनकर खड़े हो गए। तो क्या आपको उम्मीद है, गोपियां भी भटक रही है सब जगह पर, पत्तों को, वेलियों को, वृक्षों को, वन्य देवता, ग्राम्य देवता, सभी देवताओं को पुकार रहे, कहीं आपने हमारे कृष्ण को देखा है। और सब रोते रोते पागलों की तरह भाव विभोर होकर, विरह में व्याकुल होकर, क्यों हमने गर्व किया, वो तो सबके साथ थे, ऐसा विचार करते करते वो आते हैं। तो रास्ता में उनको चतुर्भुज नारायण वैकुंठ के भगवान दिखाई पड़ते हैं। आप क्या करेंगे अगर आपको भगवान तुरंत मिलेंगे चतुर्भुज नारायण, तो क्या करेंगे बताओ ना, हाँ दंडवत प्रणाम करेंगे ना, उन्होंने भी किया। और फिर क्या करेंगे आप, निकल जाएंगे वहाँ से तुरंत। अभी ऐसे व्यक्ति अगर आपको रोड पे दिखाई पड़े तो आप तो वहीं पर ऐसे खिड़ून जाल पड़ने पड़े, क्या करो था थोड़ा भाग्य। तो इन्होंने क्या किया, दंडवत तो किया उनको और पूछा आपने क्या कृष्ण को देखा है क्या, इतना भाव है, देखो वैकुंठ के नारायण भगवान प्रकट है आपके सामने। और उनको भी जैसे पेड़ को पूछ रहे हैं, पंछियों को पूछ रहे हैं, वन्य देवता को पूछ रहे हैं, उनको भी पूछा आपने देखा है क्या कृष्ण को। तो कृष्ण वो नारायण भगवान इतने भाव विभोर हो गए इनका भाव देखकर, वो चार में से एक हाथ से बताया इधर गए। चक्र चक्र पद्म गदा है ना, उसे एक हाथ से दिखाया कि इधर गए, सब गोपियां भाग गई उधर। और उसके बाद में राधा रानी आई और वो कैसे आ रही पता है, वो इतनी भाव में है कृष्ण के विरह में कि एक वो भवरा है ना भवरा, वो उनके सार पे मंडरा रहा है गोल गोल गोल, वो उससे बात कर रही है, वो कृष्ण समझ कर उसको ताने दे रही है, उसको डांट रही है कि तू निर्दयी है, निर्मोही है, तुझे किस पर मोह नहीं है, तुम दिल लगा कर भाग जाते हो, चले जाते हो, कैसे तुम हो, ऐसे बहुत लंबा उनका चल रहा है डिस्कशन। और अचानक वो नारायण देखते हैं उनको कि भवरे से बात कर रही है, और वो नारायण को देखती है, वो नारायण को प्रणाम करती है और इस तरह से पूछती है ना कि कहीं तुमने मेरे प्राणनाथ कमल नयन श्याम सुंदर को देखा है, जिस तरह से पूछती है ना। नारायण भगवान जो कृष्ण नारायण भगवान बने हैं, वो अपना नारायण का स्वरूप वहाँ पर बनाए रखना नामुमकिन हो गया उनको। ही कुड नॉट मेंटेन हिज नारायण फोरआर्म फॉर्म, उनके मर्जी के खिलाफ उनका रूप अपने आप बदल गया। दो हाथ जो थे एक्स्ट्रा वो झड़ गए और चारों हाथ में जो वस्तु हुई थी ना शंकरचक्र पद्मा वो गायब हो गए और वो दोबारा द्विभुज वनमाली कृष्ण बन गए। उनको खुद को नहीं पता चला कि उनके अंदर ये परिवर्तन कैसे हुआ। अभी देखो जिनके अंदर पूरी शक्ति है विश्व की, विश्व के सब सर्वोत्तम भगवान वही है, इच्छा से वो चतुर्भुज रूप दिखाया उन्होंने तो इच्छा से उसको उनको खींचना है वापस, और वापस जब मर्जी है तभी द्विभुज बनना है। लेकिन अपने शक्ति के परे जाकर न चाहते हुए भी वो त्याग गया, उनसे त्याग दिया नहीं, त्याग हो गया उनका, अपने आप ही त्याग हो गया। कारण क्या था? राधा रानी का माधुर्य प्रेम जिस भाव से प्रकट किया ना, वो नारायण रूप प्रकट वैसे ही रहना नामुमकिन हो गया कृष्ण को, और दो भुजा वाले बन गए। सब गोपियाँ चली गई और जिनको खोजने के लिए गई वो मिले किसको? राधा रानी को, क्योंकि राधा रानी ने वो कृष्ण नारायण के अंदर से कृष्ण को बाहर निकाला और प्रकट करवाया। ये शक्ति समझ सकते हैं कितनी बड़ी शक्ति है? वैकुंठ नाथ से अपने कृष्ण को अलग किया उसने और प्रकट करवाया उसने। तो भगवान ने तो ऐश्वर्य दिखाने का प्रयास किया लेकिन राधा रानी के माधुर्य ने डिफीट कर दिया उसको। ऐसे कई बार हुआ है ब्रज में कि जितना प्रयास करते हैं ना उतना वो माधुर्य वहाँ टिकता ही नहीं है, और वो माधुर्य का जो है ना वो सर्वोत्तम स्थिति जो है वो राधा रानी। यहाँ तक कि यशोदा भी इस बात को मानती है, क्योंकि क्या हुआ ना, देखो रात को जब कृष्ण सोते हैं ना, देखो गैया चरा के आए है ना, तो उनका बहुत सारा समारोह होता है। वो आते हैं, बातें करते हैं, क्या क्या हुआ सब ग्वाल वाल बताते हैं, कृष्ण बताते हैं, बलराम बताते हैं, सब बाद में सब कुछ शांत हो गया, फिर उनको ऊपर लेके जाते हैं पहाड़ पर, नंदीश्वर पर्वत पर, वहाँ पर उनको स्नान कराते हैं, वो धूल के कपड़े निकाल लेते हैं, फिर उनको पंचामृत का अभिषेक करते हैं, स्नान कराते हैं, फिर उनको नए वस्त्र पहनाते हैं, फिर माखन मिश्री खिलाते हैं, फिर लोरी सुनाते हैं, फिर सुला देते हैं। इसका मतलब कृष्ण सो गए ना अभी, तो फिर रात को कौन डांस कर रहे हैं? मैया उठेगी देखेगी हाँ बालक तो है मेरे पास, और हम बार बार पढ़ते हैं रात में मुरली बजाते हैं, गोपियों को मिलते हैं, कोई निधिवन में निवास कर रहे हैं राधा रानी के साथ, कभी किधर निवास कर रहे हैं, कभी रात को अंतर्दान हो रहे हैं, गोपियाँ रात को तड़प रही है उनको ढूंढते ढूंढते, तो कहीं ना कहीं तो है ना उधर बीच में, तो वो कौन है फिर? वो है गोपी कृष्ण या राधा के कृष्ण, और जो सो रहे हैं वो कौन है? यशोदा कृष्ण। मतलब जैसे ही वो विश्राम करने जाते हैं और लोरी सुनाकर वो सो जाते हैं, उसमें से ही गोपी कृष्ण निकल जाते हैं बाहर और वन में गोपियों को पुकारते हैं। शरद ऋतु में हुआ, वो पहली बार हुआ था, उसके बाद में हर रात को भगवान ने रास रचाया है, और ब्रज का ऐसा कोई कण नहीं है जमीन का जहाँ पर रास नहीं हुआ है। पहले शुरू हुआ था केवल बंसीवट में, वहाँ पर हुआ था, लेकिन उसके बाद में जितने भी वन है, जितने भी स्क्वायर इंच स्क्वायर मिलीमीटर जितना भी आप सोचो, कम से कम जितने भी एरिया है, वो हर एरिया में रास नृत्य हुआ है। तो एक दिन अचानक ये गोपी कृष्ण आ रहे हैं, यशोदा ने देखा, और वो जानती थी कि मेरे घर पे भी सोए हुए हैं, तो मुझे समझ में आया कि ये राधा रानी के कृष्ण हैं, और राधा रानी के कृष्ण के सामने गोपी यशोदा कृष्ण भी आए, दोनों खड़े हैं, और राधा रानी भी खड़ी है, गोपियाँ भी खड़ी हैं, और यशोदा भी खड़ी है, और सब लोग चर्चा कर रहे हैं कि हु इज़ बेटर, मेरा कृष्ण बेटर है कि आपका कृष्ण बेटर है। और उस पूरा चर्चा का अंतिम परिणाम क्या हुआ? यशोदा ने भी मान लिया कि आपका कृष्ण जो है वो श्रेष्ठ है, तो दोनों एक रूप हो गए और मैया ने दूध पिलाया उसको। ये ब्रज है, और ये ब्रज उसी के लिए मशहूर है जो प्रेम राधा रानी रिप्रेजेंट करती है, जिसका प्रतिनिधित्व करती है, वो प्रेम ही स्वरूप ब्रज है, और उस प्रेम को ही अनुभव करने के लिए हमारे ठाकुर जी ब्रज में आते हैं सब कुछ छोड़कर। उनको डांट फटकार भी अच्छी लगती है, जब गोपियाँ डांटती हैं उनको तो कहते हैं आप जब डांटती हैं तो मुझे वेदों की प्रार्थनाएं भी तुच्छ लगती है, इतने देवदेव देवी देवता देव ऋषि सब लोग तपी ध्यानी जो सब लोग वेदों के गौरव करते रहते हैं, ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है उनको उसके अंदर, अपने बालकों के ज़्यादा इंटरेस्ट है जिनके साथ खेलना है उनको। राधा रानी का मर्जी उनको इतना ज़रूरत है उसकी, अगर वो मर्जी नहीं है तो वो अपने आप को एकदम यूजलेस मानते हैं। देखो अभी एक कहानी मुझे याद आ रही है, काम्यवन में एक जगह है जिसका नाम है सेतु बंध रामेश्वर। आप लोगों ने कितने लोग गए उधर? ब्रज बहुत अद्भुत जगह है, ब्रज बहुत अद्भुत स्थान है। और ऐसे ऐसे स्थान हैं कि हम लोग कैसे अभी बरसाना गए, नंदगांव गए, वृंदावन मिस्कॉन में गए, इधर उधर गए, बांके बिहारी गए, चले आते वापस। लेकिन काम्यवन एक बहुत सुंदर प्रति वृंदावन है, वृंदावन के बाद का सबसे प्रिय स्थान तो काम्यवन है। तो काम्यवन में एक बार ना सब गोपियाँ राधा रानी के साथ में कृष्ण को मिलने आई और कृष्ण ने मतलब लीला कर रहे थे वो। तो गोपियाँ राधा रानी कहती है कि हमने सुना है कि आप राम थे पिछले जन्म में। तो कृष्ण क्या बोलते हैं, मैं कैसे राम, हाउ इज इट पॉसिबल, मैं तो आपका ग्वाल बाल हूँ, इधर का मैं गैया चरा था, मैं कैसे राम, तो भगवान थे, रावण का वध किया था। बोलते नहीं नहीं आप नाटक मत करना, हम जानते हैं, हमें पक्का न्यूज मिला है कि आप ही राम थे। तो फिर भी नहीं 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 मैं नहीं ऐसा दिखा रहे हैं कि मैं कुछ भी नहीं। तो अभी राधा रानी को ही पता है, खुद ने अपना फाइनल शस्त्र निकाला। ओके देखो, अगर हमें आप राम का रूप नहीं दिखाएंगे तो हम आपसे बात नहीं करेंगे। तो अगर दुनिया में हमको कोई ऐसा बोलेगा तो मत करो बात, क्या मेरी बात, बड़ी सौ बीघे बोल छोटा फर्क है बड़े, मैं नहीं करूँगा, जो मुझे करना है वो नहीं मैं करूँगा ही नहीं, तुम कुछ भी बोलो। लेकिन जब राधा रानी ऐसे कभी कहती है तो सबसे बड़ी धमकी है कृष्ण के लिए। मूर्तिमान भय भी जिससे भयभीत है, ऐसे कृष्ण के लिए राधा रानी अगर कहती है कि हम आपसे बात नहीं करेंगे, इट्स द बिगेस्ट थ्रेट। अगर खेलते हुए अगर कृष्ण हार रहे हैं और मैया उनको तभी लंच के लिए पुकार रही है समझो, और कृष्ण जाने लगे तो ग्वाल बाल कहते हैं कल आपको खेल में नहीं लेंगे, ये कृष्ण के लिए सबसे बड़ी धमकी है। वो माँ बुला रही है फिर भी छोड़ के वापस खेलने जाते हैं, अरे आई वॉन्ट टू प्ले विद देम, क्योंकि इतना मैं वैकुंठ छोड़ के वहाँ पर क्यों आया हूँ, आप खेलने के लिए तो आया हो। आई जस्ट कैन नॉट एक्सेप्ट कि ग्वाल बाल मुझे कह रहे हैं कि कल आपको खेल में नहीं लेंगे। दोबारा जाते हैं वहाँ पर और हार जाते हैं अच्छी तरह से और बोले ओके मैं लंच में जाता हूँ, आपका दंड जो है मेरे को देना है वो आके दूंगा आपको। मतलब खेल में लेना एक गारंटी लेकर ही फिर जाते हैं घर पे। वैसे ही उधर काम्यवन में बोल रहे हैं कि आपसे बात नहीं करेंगे, इट इज लाइक एंड ऑफ कृष्णाज लाइफ अगर गोपियां कहेंगे बात नहीं करेंगे। तो फिर तुरंत कहते आंखें बंद करो, हाँ तो आंखें बंद करें, फिर बोलते आंखें खोलो। तो जब आंख खोलते ना तो क्या दिखाई पड़ता है, नीले रंग के कृष्ण जो है वो हरे रंग के राम बने हुए हैं, उनके हाथ में मुरली के बजाय जगह पर धनुष और बाण है, दाऊ जी लक्ष्मण बने हुए हैं धनुष बाण लेके खड़े, वनवास के रूप में है, जगह धारण किए हैं, वलकल पहने हुए हैं और सीता की खोज कर रहे हैं। और जितने भी ग्वाल बाल थे वो सब बंदर बन गए और उनको लेकर प्रभु रामचंद्र एक सीधा जगह बैठते हैं, वहाँ पर एक शिवलिंग स्थापन करते हैं रामेश्वर महादेव, उसका पूजन करते हैं। तो उस लीला के माध्यम से वहाँ पर रामेश्वर धाम प्रकट हो गया ब्रज में, क्योंकि रामेश्वर धाम जैसे अनंत जितने भी तीर्थ और धाम हैं वो सब चाहते हैं कि ब्रज में आकर आश्रय ले लें। तो भगवान अपनी लीलाओं के माध्यम से उनको वहाँ पर आश्रय देते हैं, तो रामेश्वर ने आश्रय ले लिया। उसके बाद में भगवान ने क्या किया था रामलीला में, वहाँ से आए ना वो और फिर समुद्र में सेतु बांधने का उन्होंने काम किया है ना, उसके बाद में रामेश्वर भगवान की पूजा करके सेतु का संकल्प किया था और फिर सेतु बंध निर्माण किया था। तो जैसे ही वहाँ से बाहर निकले तो अचानक गोपियों के आंखों के सामने बड़ा विशाल सागर निर्माण हो गया, हिंदी महासागर, जिसमें श्रीलंका है उधर टापू के रूप में। अभी उनको तो बहुत समय लगा बनाने में, इधर ना प्रकट हुआ सागर बीच में और कुछ ही सेकंड में वहां पर सेतु बंध बन गया, धराधर डालते गए सब लोग और बंद गया। और वहां भगवान कुछ ही समय में कुछ क्षण में पहुंच भी गए उधर, और वहां पहुंचते ही मैं त्रिलोक विजयी रावण, एको हम द्विजो नास्ति न भूतो न भविष्यति, ऐसे करके रावण दशानंद प्रकट हो गया। तुरंत राम ने बाण निकाला, खैक करके मारा, उसको खत्म हो गया, गिर गया उधर ही। और सब लोग क्या कर रहे हैं, आप लोग गोपियां हो, गोपियां देख रही है वो नाटक सब। इस तरफ बैठे हुए हैं, यहाँ पर लीला चल रही है, यहाँ पर बैठकर वो पूरा ड्रामा देख रहे हैं। तो ऐसे कुछ ही क्षणों में भगवान ने वहाँ पर हिंदी महासागर प्रकट किया, सेतु बंध प्रकट किया, रावण का वध किया, सबको आनंद दिया गोपियों को। फिर आवाज आई, आंख बंद करो। सब गोपियों ने आंख बंद कर दी, बोले आंख खोलो। जब आंखें खोली तो उनके पास में कृष्ण बलराम सब ग्वाल बाल खड़े थे, लेकिन सेतु बंद, समुद्र, लंका, रामेश्वर उधर ही रह गए। इस लीला के प्रणाम पर, लीला के क्या कहते हैं उसको, प्रूफ के रूप में। तो ये लीला वहां पर कई बार हुई, ऐसे नहीं कि भगवान लीला एक ही बार करते हैं और एक ही टोन में करते हैं। अगली बार जब जमा होंगे उधर तो बोले एक काम करो, आप ना कृष्ण का भेष, कृष्ण जो है ना, आप जो श्याम सुंदर हो, आप राम का भेष बनाओ और लक्ष्मण का भेष बलराम जी को बनाने दो, सब ग्वाल बालों को बंदर का भेष बनाने दो और आप हमारे सामने वो नाटिका प्रस्तुत करो। अभी राम नहीं बन रहे, वो ड्रामा प्रेजेंट कर रहे हैं, इसमें राम बने ही, खुद राम बनकर दर्शन दिया उनको और इसमें सब नाटिकाएं प्रस्तुत की, सब गोपियां बैठ गए, पूरा ड्रामा देखा उन्होंने और उस ड्रामा में ये सब प्रकट हो गया अलग कल्प में। ऐसे कई प्रकार के विविधता पूर्वक लीला वहां पर प्रकट हुई है। तो भगवान भी कितने अद्भुत है, देखो राधा रानी की इच्छा के लिए उन्होंने कितने धाम प्रकट किए। राधा रानी की इच्छा के लिए तो वृंदावन धाम को भेजा, ऊपर से उन्होंने, राधा ने कहा कि मैं तो ब्रज के बाहर जा नहीं सकती, मुझे ब्रज के बाहर आना ही नहीं है, जहाँ गोवर्धन नहीं है, यमुना नहीं है, वृंदावन नहीं है, वहाँ नहीं आ सकती मैं। भगवान ने कहा आपके इच्छा को जानते हुए मैंने पहले ही पृथ्वी पर पूरे गोवर्धन, पूरे यमुना को और वृंदावन धाम को भेज दिया है। इसका मतलब क्या हुआ, आज अगर पृथ्वी पर वृंदावन धाम है तो केवल राधा रानी की वजह से है। इसलिए वृंदावन धाम का पत्ता पत्ता डाली डाली राधे राधे पुकारता है, कोई वहां पर जय श्री कृष्णा नहीं कहते, क्योंकि जय श्री कृष्णा करेंगे तो कृष्ण सुनेंगे ही नहीं, ये सबको पता है। क्योंकि वो कैसा है, अनन्य चिंतन दुमान, वो उस खाते में आता है। इसलिए वृंदावन में सब जानते हैं कि यहाँ पर कृष्ण को पुकारने से कृष्ण लाभ नहीं होगा, प्राप्ति नहीं होगी, राधे राधे पुकारेंगे तो प्राप्ति होगी। हम लोग जब पहली बार गए थे ना वृंदावन में तो रिक्शा वाला भी राधे राधे बोल रहा है, तो हमको क्या लग रहा है कि राह दे रास्ता दो ऐसे बोल रहे हैं। तो रिक्शा वाले के बीच में लोग आते हैं ना कभी, तो उनको भी पोंक पोंक करते, वो सुनता थोड़ी है, बड़ा भौंक करके हॉर्न बजाए तो सुनेंगे बड़ी गाड़ी का, लेकिन वो टेम्पो वाला कोई सुनाएंगे तो सुनते नहीं, तो फिर वो राधे 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 बोलते हैं। तो मुझे लगा कि राह दे ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन हर व्यक्ति वहाँ पर राधे राधे पुकार रहे हैं और यही धन है उनका जीवन का। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा, राधा 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 राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा। ये सबको पता है, वहां हर एक पंछी, हर एक तोता बोलते हैं ना, तो गुरु जी का बताते हमें ये आपको अलग अलग आवाज आ रही ना, ये सब राधे राधे पुकार रहे हैं। एक गोवर्धन में ना एक कथा है सुंदर, उस समय ब्रज में ना ऐसे पेड़ हुआ करते थे, बहुत सारे पेड़ हुआ करते, समझो नंदगांव में पेड़ लगा हुआ है कोई विशाल बरगद का पेड़, उसकी शाखा जो है ना वो मथुरा पहुंच रही है, एक शाखा जमुना पार जाके उधर भद्रवन बेलवन के पास पहुंच रही है, ऐसे चारों दिशा में शाखाएं हुआ करती थी और ग्वाल बाल कई बार गौचारण जो है ना वो पेड़ के ऊपर से करते थे, नीचे गैया चला रही है ऊपर से ये चल रहे हैं, ऐसा था उनका, बिकॉज जमीन के लगे ही शाखा चल रही है और नीचे से गैया चल रही है, जब चाहे तभी जमीन पर चलता भी शाखा पर। तो ऐसे पेड़ गोवर्धन में थे, वृंदावन में थे, तो गोवर्धन में एक पेड़ था, उसकी बड़ी शाखा गोवर्धन के एंड तक पहुंची थी और उस शाखा के एंड में एक शुक और सारी जोड़ी बैठे हुए और वो ना ऐसे शाखा में बैठे हुए ऐसे बैठे पहले ऊपर, और शुक और सारी जो हैं वो चर्चा कर रहे हैं। तो शुक्र जो है वो कृष्ण के पक्ष में है, तो सारी जो है मैना वो राधा रानी के पक्ष में है। तो बहुत सुंदर वर्णन है, मेरी पूरा मुझे अभी समय नहीं है, लेकिन शुक जो है कृष्ण की स्तुति कर रहा है। जैसे ही कुछ स्तुति करता है तो मैना ऐसी स्तुति करती है राधा रानी की जो कृष्ण से श्रेष्ठ है। समझ में आपको, हमारे कृष्ण जो है इतना मधुर मुरली बजाते हैं। अरे ये बात सही है कि कृष्ण मुरली मनोहर है, उनकी मुरली सुनकर विश्व पूरा प्रभावित हो जाता है, लेकिन आप जानते नहीं हो ये मुरली जो है ना हमारी राधा रानी ने उनको सिखाई है। मतलब कृष्ण की तोते की बाट को काट नहीं रही है वो, लेकिन ऐसी बात कर रही है कि श्रेष्ठ साबित कर रही राजा रानी को। फिर वो कहते हैं हमारे कृष्ण जो है वो नटराज हैं, मैया उनको ना कस कस के घुंघरू बांधती है, तीन तीन बांधती है, लेकिन जब लौट के आता है तो एक ही रहता है पैर में उसके। क्यों? जो ऐसा नृत्य करता है कि पैर से घुंघरू टूट कर दो दो मील अगले वन में मिलते हैं, उड़ जाते हैं, ऐसा नृत्य करता है। इतना सुंदर नटराज है, ऐसा श्रोता बोल रहा है। तो मैंने क्या बोल रही है, लेकिन जमुना किनारे में नृत्य करने के लिए राधा रानी ने सिखाया उनको, कई लीलाएं उनकी, वो राधा रानी क्लास ले रही है उनका, हाँ डांस का क्लास ले रही है। अब ये इतने चतुर और इतने होशियार है ना, इतने आकलन शक्ति और ग्राहक शक्ति इतनी तेज है इनकी कि 64 दिन में 64 कलाएं सीखे इन्होंने चांदीपनी के आश्रम में। 12 साल का जो था ना उनका कोर्स पूरा, उन्होंने 64 दिन में पूरा कर दिया, एक दिन में एक कला आत्मसात सर्वश्रेष्ठ तरीके से, गोल्ड मेडल। फिर उनको वृंदावन में डांस क्या मुश्किल बात है, लेकिन ना राधा रानी सिखा रही है और ये जानबूझ के गलत कदम डाल रहे, रॉन्ग स्टेप। क्यों कर रहे हैं ऐसा, क्यों कर रहे हैं? तुरंत सीखना चाहिए ना क्लास में, आज जल्दी क्लास खत्म हो तो अच्छा है। नहीं, अगर जल्दी सीख गए तो संघ का समय कम होगा ना, अधिक समय संघ में रहना है उनके, इसलिए रॉन्ग स्टेप डाल रहे हैं ताकि वो और वापस सिखाते रहेगी, वापस रॉन्ग डालेंगे, वापस सिखाते रहेगी तो बहुत समय जमुना किनारे में उनका संघ मिलेगा। इस अभिलाषा से रॉन्ग कदम डाल रहे हैं। और राधा रानी इतनी भोली भाली है ना, उनको समझ में नहीं आ रहा है, अरे कन्हैया ऐसे किया करो, दिखा रही है फिर भी ये रॉन्ग स्टेप डाल रहे हैं। फिर उनको समझ में आता है कि ये बहुत होशियार है और ये जानबूझ के कर रहा है, फिर रूठ कर चली जाती है, ये उनके रूठने का एक कारण है। तो मैना क्या बोल रही है, जमुना किनारे में नृत्य करने को हमारी राधा रानी ने इनको सिखाया। तो ऐसे ये कुछ बोल रही है, वो कुछ बोल रहे हैं, कुछ बोल रही है, वो कुछ बोल रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, वो कुछ बोल रहे हैं। उसके बाद में दोनों ना एकदम भाव विभोर हो जाते हैं और जो शाखा पर ऐसे बैठे ना वो ऐसे हो जाते हैं। आपको समझ रहा है, वे पैर उनके ऊपर हैं और उनका मुख नीचे है और आंखें भी नीचे हैं और उसमें से आंसू टपक रहे हैं प्रेम के, राधा और कृष्ण के। और नीचे कृष्ण गुजरे, अभी अभी चले गए हैं, तो अभी क्यों इकट्ठा हो गए वो तोता मैना, वो अभी अभी कृष्ण यहाँ पर आए थे, राधा रानी के संग लीला कर रहे थे, अभी अभी यहाँ से गुजर चले गए हैं यहाँ से, तो उधर चरणों के निशान है, मतलब क्या है, गड्ढा है जमीन में, ऐसे चिन्ह है ना, थोड़ा सा डिप्रेशन है जमीन में, तो उनके अश्रु एक चरण के गड्ढे में गिर रहे हैं और वहाँ पर छोटा तालाब बन गया उनके अश्रुओं का, टप 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 अश्रु निकल रहे चारों आंखों से और वो उसमें जमा हो गया। उसमें अचानक एक कीटक आ गया और उसमें गिर गया, गिरते ही चतुर्भुज विष्णुभुज बनकर वैकुंठ चला गया। ये ब्रज है जहाँ राधा रानी सम्राट भी है, द क्वीन। सारा जो भी ब्रज में चल रहा है ना वो राधा रानी की वजह से चल रहा है। कृष्ण चले गए 10 साल 11 साल 52 दिन के बाद चले गए, वो ब्रजवासी तभी मर चुके होते क्योंकि उनको तो नंद महाराज को, यशोदा माता को, माता को एक क्षण भी कृष्ण आंखों के सामने से ओझल हो गए तो उनको रहा नहीं जाता था, वो देखो इट्स बिकम रेस्टलेस। यशोदा मैया तो जब भी वो छोड़ना चालू किया ना गौचारण करने के लिए, तो भी पहले रूल था उनका कि वत्सपाल यानी बच्चों को दे दो उनको, क्योंकि बच्चों के बिना रहते नहीं ये, क्या करेंगे, उनको दे दो चराने के लिए। तो बछड़े दे दिए ना, तो रूल बनाया कि ओके आप जाओगे ना तो मैं मेरे घर के ऊपर जाऊंगी छत पे, अभी भी उधर एक बैठक है यशोदा बैठक, बहुत सुंदर जगह है, ऐसे एक छतरी बना के रखी थी, वो सबसे टॉप पोजीशन है। वहाँ पर से आपको पूरा नंदगांव का दर्शन होगा, आगे भी दर्शन गोवर्धन दिखाई पड़ेगा, कामेवन का रास्ता भी दिखाई पड़ेगा, सब कुछ दिखाई पड़ेगा सब पूरा। तो वो कैसा है, सीसीटीवी जैसा है। वहाँ से जाके यशोदा खड़ी रहेगी और कहीं भी उनकी नज़र के अंदर वो रहने चाहिए, उतना ही दूर जाना है, उसके आगे नहीं जाना है। और फिर भी वो जो गए भी तो वो ना हर 10 मिनट में जाके ऊपर देखती थी किधर है, अच्छा खदेर वन में, अच्छा इधर है, अच्छा संकेत वन में, ऐसा उनका स्थिति था। और जाती थी 10 मिनट में, एक बार नीचे देखती थी कृष्ण को, एक बार ऊपर देखती थी आसमान में। क्या देख रहे हैं आसमान में बताओ, बताओ ना, सूरज को देख रही है। अरे भैया अभी तक इतने ऊपर क्यों हो, नीचे आ जाओ, क्योंकि तुम नीचे आओगे तो घर पे आएगा। तो नीचे देख रही है कृष्ण को गौ चराते हुए, मतलब वत्स चराते हुए, ऊपर आकाश में देख रही है। इतनी व्याकुल रहते थे, इतनी व्याकुल रहते थे। और फिर एक बार सूरज ऊपर से बीच में से नीचे आने लगे ना, तो ये ऊपर नीचे करती थी। कहते थे उनके स्तन हमेशा दूध से भरे रहते, बहते रहते थे, मतलब कपड़ा जो है उनका गीला ही रहता था हमेशा। कॉन्स्टेंट कृष्ण की स्मृति में, कृष्ण के वात्सल्य में, प्रेम में स्तन से दुग्ध निकलते रहता था। जैसे हमारे यहाँ पर भी माताओं को होता है, जब वो बच्चों को छोड़ के काम पे जाती है ना, तो दूध पिलाने के समय वहाँ पर दूध निकलता है उनका वात्सल्य से। यशोदा माता का ऐसा वर्णन है कि कभी उनका दुग्ध जो है कभी बंद ही नहीं हुआ छाती से, आंखों में कभी आंसू बंद ही नहीं हुए। कहते हैं आंखों में ऐसे आंसू निचले वाले पलक में भरे रहते थे और बहते रहते थे। तो ऐसे व्यक्ति, मैंने आपको एक ही एग्जाम्पल दिया, नंद महाराज का नहीं दिया, रोहिणी का नहीं दिया, किसी का नहीं दिया अब तक मैंने। ऐसे व्यक्ति अगर कृष्ण चले गए तो वो केवल मृत्यु ही उनके लिए एक उपाय था, और कुछ उपाय नहीं था। तो वो कैसे जीवित रहे सब लोग, राधा रानी उनके जीवन का सहारा था, राधा रानी को देख देख के जीवित रहे होंगे। राधा रानी मथुरा नहीं गई उनको मिलने के लिए, वहीं रही, सब ब्रजवासियों का जीवन का स्रोत बनकर वो जीवित रही वहां पर। और सबको ये विश्वास था कि हमारे ये किसी के लिए नहीं आएंगे, लेकिन इसके लिए जरूर आएंगे। यशोदा मैया को, गैयाओं को भी पता है, गैयाओं की क्या अवस्था थी वहां पर। जब कृष्ण चले गए ना, तो गैयाओं को थोड़ा ट्रिक किया गया, क्योंकि कृष्ण कभी इस वन में गए, कभी उस वन में गए, तो हर जगह जाते नहीं थे ना, अलग अलग जगह जाते थे। तो गैयाओं को कैसा था कि यहाँ पर आएंगे टर्न बाय टर्न, तो सबको पूरा पता नहीं था कि कृष्ण यहाँ से परमानेंटली निकल गए। वन के जितने पेड़ थे उनको पता था, नहीं था पता उनको कि कृष्ण चले गए, क्योंकि वो सोच रहे थे कि हमारे पास टर्न बाय टर्न आएंगे, कभी खदेर वन में जाएंगे, कभी कामे वन में जाएंगे, कभी बेल वन में जाएंगे, तो हमारा टर्न आएगा। तो ऐसा नहीं था कि वो चले ही गए, उनको पता नहीं था। तो गैया बहुत सारे भ्रम में थी, ग्वाल बालों को भी भ्रम में रखा गया था, लेकिन गोपियों को पता था, मैया को पता था कि चले गए। तो ये सब लोग जो है ना वो जीवित रहे, क्योंकि राधा रानी उनको ने जीवित रखा। तो ब्रज के प्रेममयी जीवन का आधार भी राधा रानी है, जब कृष्ण थे तभी भी, और खास करके जब कृष्ण चले गए तभी भी। और जब ये राधा रानी का विरह एकदम चरम सीमा में पहुंच गया ना, तो ललिता ने खत लिखा उनको कि अभी नहीं आओगे ना, तो राधा रानी तो मृत प्राय हो गई है, उनका जीवन समाप्त होने वाला है। तो कृष्ण वो रथ में बैठकर आए वहां पर। तब निधिवन में राधा रानी ऐसे बेहोशी पड़ी थी, ललिता जी पंखा दे रही थी। उस समय भगवान ने पहले कहा बलदेव तुम चले जाओ, तो बलदेव निकले, अभी सुभद्रा निकली। पर एक्चुअली क्या हुआ, डिस्कशन ऐसे हुआ था कि मैसेज आ रहा है बार बार कि सब गोपियाँ राधा रानी व्याकुल हैं, हमको जाना चाहिए। तो बलराम जी आप चले जाओ, तो बलराम जी कहते नहीं नहीं मैं नहीं जाऊँगा, फिर मैं जा चुका हूँ ना एक बार, जब गया था तो वादा करके आया था कि तुम जाओगे, फिर तुम तो गए नहीं उसके बाद, तब मैं दोबारा जाऊँगा तो मुझ पर विश्वास कौन करेगा। लॉजिक है ना वो, कि मैं एक बार गया, इत्मीनान से गया, पूरा खतवत दिया, मैसेज दिया, सांत्वना दिया, सब कुछ किया, बोला कि वो आएंगे, लेकिन तुम तो गए नहीं उनको मिलने के लिए, तो दोबारा मुझे क्यों भेज रहे हैं। तो यूजलेस विजिट है मेरा जाके, कुछ कोई विश्वास नहीं, खड़ा भी नहीं करेगा मुझे। तो सुभद्रा कहती कि नहीं मैं तो नहीं गई अब तक ना, और मैं स्त्री भी हूँ, वो स्त्री के साथ मैं अधिक संपर्क कर सकते हैं, बिकॉज दे फील दैट आई विल अंडरस्टैंड देम, तो मैं जाती हूँ। तो कृष्ण ने कहा सुभद्रा जा रही है, बलदेव की रक्षा के लिए कम से कम जाना पीछे पीछे, इसलिए बलदेव जी गए थे उनके साथ में। मैसेंजर बन के नहीं गए थे, सुभद्रा जी गई थी मैसेंजर बन के, और जब ये दोनों गए तो कृष्ण को रहा नहीं गया, कृष्ण भी उनके पीछे चल पड़े रथ लेकर। बोले बलदेव जी सुभद्रा जी आई और वो चर्चा कर रही हैं, उतने में कृष्ण आए पीछे से। तो कहते हैं कि राधा रानी का जो अवस्था देखा ना, अवस्था तो कृष्ण का स्वरूप चेंज हो गया पूरा उनको देखकर। देखो मैंने पहले भी बताया था कि गौरांग महाप्रभु का भी क्या अवस्था है, राधा रानी के द्वारा चेंज किया हुआ पर्सनैलिटी है। उसी तरह से द्वारका से कृष्ण आए, लेकिन जब वैसे ही निधिवन में पहुंचे और राधा को उन्होंने देखा उस बेहोश अवस्था में, विरह से परिपूर्ण अवस्था में देखा, तो ये जगन्नाथ बन गए। मतलब ऐसे अंदर चले गए, पैर उनके हाथ ऐसे हो गए, बड़ी आंखें हो गई, विचित्र स्वरूप हो गया उनका। और ललिता जी बोल रही हैं, अरे राधे उठो उठो, देखो कौन आया है, देखो आपको मिलने के लिए कृष्ण आए हैं। तो राधा ने देखा उनको, तो राधा भी वापस बेहोश हो गई उनको देख कर। यह ऐसे राधा जी का पोजिशन है। दूसरी बार जब कुरुक्षेत्र में उनको बुलाया था ना उन्होंने मिलने के लिए, उस समय कृष्ण को मिलने के लिए वो ब्रज के बाहर चले गए। तो वहां पर कृष्ण ने कहा था सभी अपने कुरुक्षेत्र वासियों को कि देखो उद्धव जी को कहा था, देखो उद्धव जी आपको क्या करना है, मुझे दो मीटिंग अरेंज करनी है मेरे लिए। एक मीटिंग में जितने भी सारे ब्रजवासी हैं सब लोगों को मैं मिलूंगा, नंदम बाबा को मिलूंगा, शुद्ध मैया को मिलूंगा, सबको मिलूंगा। और एक मीटिंग अलग से मेरी करना है आपको गोपियों के साथ, राधा रानी के साथ। तो वो सब हो गया उनका मीटिंग सभी ग्वाल वालों के साथ, और अलग चैम्बर में राधा रानी और गोपियों को मिलने गए वो। तो जैसे ही कृष्ण अंदर चले गए ना ऐसे उनको मिलने के लिए, राधा की अवस्था देखकर ना वापस वो जगन्नाथ बन गए। पांच जगह पर कृष्ण का रूपांतर जगन्नाथ में हुआ है, पांच जगह पर, फाइव प्लेसेस। तो जैसे ही वो जगन्नाथ बन गए ना, तो इतना उनका लुभावना रूप था, प्रेम से और विरह से भरा हुआ, कि राधा रानी ने उनको ऐसे नजर उठा के देखा और तुरंत आंखें बंद कर नीचे देखने लगी। तो कृष्ण पूछते हैं, अरे इतने साल के बाद मैं आपको मिल रहा हूँ और आप मुझे देख भी नहीं रहे, क्या कारण है उसका? तो राधा रानी को क्या जवाब देती है, राधा रानी कहती है, इतने साल के बाद अभी दर्शन दे रहे हो, पता नहीं इसके बाद कब दर्शन दोगे, इसलिए बेहतर है कि तुम्हारा दर्शन जो है हृदय में संभालू, मैं उस पर ही चिंतन करूँ, इसलिए मैं आपको देखकर आपका रूप हृदय में स्टोर कर रही हूँ, हृदय में स्थिर कर रही हूँ उसको, ताकि उसी को देखकर मैं याद करके उसी पर ध्यान करते मैं जीऊँगी आगे का। तो आपका तो भरोसा नहीं है, आप कभी आओगे, दर्शन दोगे, कब चले जाओगे, कोई गारंटी नहीं है उसकी। ऐसा है राधा रानी का स्वभाव। एनीवे आपको मैंने बहुत सारी सीरियस बातें बताई, थोड़ा सा मैं लाइट बातें बताता हूँ। तो राधा रानी जब भी उसका उनका जन्म हुआ ना, जन्म की कथा सेकेंड टाइम बताऊँ कि अभी बताऊँ? 10 बजने को आया समय, 2 मिनट बाकी, आप सब लोग रहेंगे अगली कथा में कि कुछ लोग चले जाएंगे? सब रहेंगे ना, क्योंकि मुझे जन्म की कथा करनी है, मुझे अभी याद आया कि 952 हो गए, ठीक है ना। तो जब भी राधा रानी का जन्म हुआ और कुछ समय के बाद में वो नंद महाराज सब लोग शिफ्ट हो गए ना उधर से, गोकुल से नंदगांव बरसाने आए, तो राधा रानी भी आकर उधर उन्होंने बरसाने में बस गई सब लोग। तो छोटी राधा रानी वहाँ पर अपनी मैया के साथ में खेलने आती थी, तो नारद मुनि उनको मिलने आए, क्योंकि जब उनका जन्म हुआ तो मिलने आए थे ना, उसके बाद पता था कि यहाँ पर आए, तो वहाँ पर मिलने आए। तो जब आए तो राधा रानी छोटी सी बालिका थी, अभी तो ऋषि है ना, दाढ़ी वगैरह, मतलब ऋषि मतलब दाढ़ी की जरूरत नहीं, लेकिन उनका ना एक कठोर शरीर होता है तपस्या की वजह से। तो नारद मुनि उतने कठोर लगते नहीं, फिर भी वो ऋषि तो है ही ना, तो उनको देखते हुए तुरंत राधा रानी ने क्या किया, उनके वो मेवा खा रहे थे उस समय, मेवा मतलब काजू बादाम पिस्ता सब ऐसे मैया उनको खिला रही थी, वो खा रही थी। तो नारद मुनि देखते उनके क्या सारे मेवा नारद मुनि को दे दिए। थोड़ा व्यक्ति भी जरा था ना अपरिचित, नया व्यक्ति आया ना, वो पहचान का नहीं है, तो उसे पाला छूटने के लिए तुरंत उसके हाथ में दिया और भागने लगी, और भाग के अपने मैया के पास गई और मैया के गोद में जाकर छुप गई। तो नारद मुनि ने क्या किया, जैसे ही उन्होंने वो मेवा पाया ना, इतने मोहित हो गए वो राधा रानी का रूप देखकर, बाल स्वरूप देखकर, कि बड़ी बड़ी आंखें पलके ना छुपाते हुए छपकाते हुए उनको देखने लगे वो। तो वो उनकी आंखें देखकर वो डर गई और भागी मैया की गोद में, और छुपकर ऐसे मैया ने उनको लड्डू खिलाना आरम्भ किया कि उनका डर कम हो जाए। फिर मैया कहती है, अरे यही तो आए थे जब आपका जन्म हुआ था, आपको गंडा बांध कर चले गए थे, आपके लिए मंत्र का उच्चारण किया था उन्होंने सुरक्षा के लिए, ये बड़े महात्मा हैं ये, इन्होंने ही तो आपको आपकी आंखें खुलवाई, आपके कान खुलवाए, आपका मुख खुलवाया, सब पता है राधा रानी को। लेकिन वो बता रही है एक बालिका के रूप में, ऐसे नारद मुनि का दर्शन हुआ राधा रानी का। दूसरी बार क्या हुआ, जब वो ऐसे वहाँ पर रेंग रही थी तो शिव जी दर्शन करने के लिए आए। शिव जी तो कई बार आए ना, वो मथुरा में भी आए थे, गोकुल में भी आए थे, चिंता हरण महादेव कृष्ण को देखने के लिए आए थे, फिर नंदगांव में भी आए आशेश्वर महादेव, उसे बरसाने में भी आए हैं। तो आते ही उन्होंने राधा रानी को दंडवत प्रणाम किया। राधा रानी छोटी सी लाली जो है वो रेंग रही थी, शिव जी ने दर्शन किया, वो आंखों से अश्रु बहाए बहुत भाव से। तो राधा रानी ने कहा, अभी आप यहीं रहो, यहीं रहकर मेरा दर्शन रोज किया करो। तो शिव जी वहाँ पर वहीं बस गए पीली पोखर के पास। क्या नाम पड़ा उनका, प्रियेश्वर महादेव। प्रियेश्वर महादेव के रूप में वो वहाँ पर बसे हुए हैं। फिर एक बार क्या हुआ, अभी भी 4 मिनट बाकी है। तो एक बार क्या हुआ, नारद मुनि तो आए, शंकर जी आए, तो वह दुर्वासा मुनि आए। दुर्वासा मुनि आए ना, तो दुर्वासा मुनि उधर भी रमण रीति में भी आए थे कृष्ण का दर्शन करने के लिए, परम भगवान कहते हैं कि यहाँ पर आए हैं। तो वहाँ पर बहुत सुंदर लीला हुई उनकी, तो कभी और बताएंगे आपको। तो वैसे ही बरसाने में आए, तब राधा रानी ना बैठ कर वहाँ पर सारे सखियों के साथ, बहुत छोटी छोटी सखियाँ थी, जो सखियों के साथ में वो घरकुल खेल रहे थे। आपने खेला है घरकुल, जानते हैं घरकुल क्या होता है, मतलब हमारे सब ने वो खेल खेला बचपन में, सब फ्रेंड्स एकत्र आएंगे, छोटे छोटे लड़के लड़कियाँ, एक माँ बनेगी, एक पिताजी बनेगा, कुछ बच्चे बनेंगे, कुछ ऐसे पहरेदार बनेंगे ऐसे एक, और फिर माँ खाना बनाएगी, पिताजी काम पे जाएंगे, फिर बच्चे स्कूल जाएंगे, फिर घर आएंगे, फिर उसको खिलाएंगे, फिर माँ खाना बनाएगी। तो ये सब जो है ना, इनका लीला मट्टी 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 में ही हो रहा था, यानी मट्टी का चूल्हा, मट्टी के बर्तन, मट्टी के व्यंजन, सब कुछ मट्टी, ब्रजराज है ना, परम पवित्र। तो राधा रानी माँ बनी हुई है और वो सबके लिए भोजन बना रही है, और सब गोपियाँ उनका हाथ बटा रही है, उनको कुछ ना कुछ दे रही है। अभी क्या हो रहा है, इतने मग्न है सब लोग लीला में, अपने खेल में, बच्चे होते हैं ना, बच्चों को तो खेलने के समय भूख लगती नहीं, नींद नहीं आती, कुछ नहीं होता है। आप घर पे खाना खाने बुलाएंगे, खेल से अलग करेंगे, फिर पैर दुखेंगे, फिर भूख लगेगी, फिर नींद भी आएगी, फिर थक भी जाएंगे, लेकिन जब तक खेल रहे हैं तब उनको कुछ समझता नहीं क्या चल रहा है, सूरज चल रहा है कि चांद चल रहा है, उनको कुछ समझता नहीं। वैसे ये मग्न होकर खेल रहे हैं, अपनी सुध बुध खोकर खेल रहे हैं। और राधा रानी क्या कर रही है, खीर बना रही है, दूध की खीर बना रही है, लेकिन है सब मट्टी। तो तभी वो गोपियाँ यहाँ वहाँ कुछ इकट्ठा कर रही है, हेल्प कर रही है, वहाँ दुर्वा सामने आते। तो खेल खेल में मग्न गोपियाँ कहते, आइए महाराज आइए, भोजन कीजिए, गरम गरम भोजन बन रहे हैं। दुर्वा सामने कहते, क्या मजा कर रही हो, भस्म कर दूंगा। वो अपने मूड में है, ये अपने मूड में है। तो ऐसे कहते ही वो गोपियाँ तुरंत धर जाती है, भाप रे भस्म करने की बात कर रहे, भाग के राधा रानी के बुलाते, माता राधा रानी को पुकारते, श्री जी देखो देखो वो मुनि महाराज जो भस्म करने की बात कर रहे हैं। उतने में वो चल के उनके पीछे भी जाते हैं, भाई कौन है ये, क्या कर रहे हैं। तो वहाँ आते हैं जहाँ पर राधा रानी चूल्हे पर खीर बना रही है। तो राधा रानी ना उनका एक नाम है मधुर संभाषणी। वो जब कुछ बोलती है ना, सम्मोहन होता है, सम्मोहन इट्स लाइक हिप्नोटाइजिंग। अगर कुछ कहेगी तो सुनने वाला एकदम भाव विभो हो जाए। तो ऐसे मधुर भाषण में कहती है वाणी में कि मुनि जी क्यों जलाकर भस्म करने की बात कर रहे हैं, थोड़ी सी खीर खा लिया तो क्या प्रॉब्लम है आपको, गरम गरम खीर बन रही है खा लो। अभी गोपियों के कहने से भस्म करने की बात कर रहे थे, इनके कहने से थोड़ा हाथ आगे किया, मट्टी के बने हुए बर्तन में मट्टी ही डालकर दिया खीर, खीर के रूप में, मतलब खीर के भाव से, लो महाराज जी खीर खाओ। और उसको देखकर भी मोहित हो रहे हैं, उसकी वाणी सुनकर भी मोहित हो रहे हैं, और उसको देखकर ही वो खाने लगे, मट्टी खा रहे हैं, पूरी पूरी ब्रजराज खा रहे हैं, और उनको दिव्य खीर खाने का आनंद मिल रहा है, स्वर्गीय खीर से भी श्रेष्ठ खीर, इतना स्वाद कि आंखों से आंसू आने लगे, शरीर में रोमांच खड़े हो गए उनके, और खाते जा रहे खाते जा रहे खाते जा रहे। ये राधा रानी का प्रभाव है, देखो मट्टी खिला रही है उनको लेकिन खीर का आनंद दे रही है। तो दुर्वासा मुनि जो श्राप देने में बड़े बाहर प्रसिद्ध हैं, उन्होंने वरदान दे दिया उसे तुरंत, कहा कि ये कन्या के हाथ से जो भी भोजन बनेगा वो अमृत से भी अधिक स्वादिष्ट बनेगा, और जो भी इसको खाएगा वो सब रोग से मुक्त हो जाएगा, और जो भी वो खाएगा वो परम विजयी रहेगा हमेशा, इल बी ऑलवेज विक्टोरियस। ये आगे आने वाली बहुत लंबी लंबी कहानियों की एक जड़ है, यहाँ से इस वरदान से कई लीलाएं रची गई उसके आगे, जो हम आपको अगले सत्र में बताएंगे। हरे कृष्णा, जय जय श्री राधे। तो ऐसे ही हरे कृष्णा।